वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्णा हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम
हरे राम राम हरे
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे।
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। भगवान गीता में बताते हैं कि जीवन के अंत में हम सबको उनकी याद करनी है, उनका स्मरण करना है, तब जाकर हमारी जो गति है वो उनके धाम में होगी। ये पूरा जीवन जो है हमारा ये साधना के लिए है कि हम जीवन भर उनको याद करते रहें, उसका अभ्यास करते रहें, और उस अभ्यास का रूपांतर प्रेम में होना चाहिए और प्रेम से उनकी याद आनी चाहिए। और ऐसी चेतना और ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि सदैव स्वतः हृदय से उनकी याद बनी रहे, तब जाकर अंतिम समय में उनकी याद आएगी। संकट के समय कठिन प्रसंग में हमें वो चीज याद आती है जिसपे हम आसक्त हैं, इसलिए हमें इस विश्व में जब हम जीते हैं इस शरीर के अंदर तो भगवान का भजन करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमको ऐसे ऐसे स्थितियों में से गुजारते हैं कि जिससे हम उनकी याद करने में और निपुण हो जाएं। जीवन की हर एक घटना जो है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है, भगवान के द्वारा सुनियोजित है, जिसके द्वारा भगवान हमारी तैयारी करते हैं। हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कष्ट हमको होता है, पीड़ा होती है, लेकिन हर एक वस्तु, हर एक घटना, हर एक प्रसंग जो जीवन में हमारे आता है, हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान के द्वारा हमारे लिए एक व्यक्तिगत रूप में किया हुआ वो सुनियोजन है। और ये नाम जो भगवान का है वो हमें उनकी स्मृति दिलाने में बहुत ही आसान तरीका है। योग ध्यान तप करके भी हम भगवान को भूल सकते हैं क्योंकि वो अलग स्तर पे है, और योग ध्यान और तप करके भी हम भगवान को प्रेम करेंगे ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नाम साधना ऐसी है कि भगवान ने अपना पूरा व्यक्तित्व, पूरा ऐश्वर्य इस नाम के अंदर डाल दिया है, इसलिए जब हम भगवान का नाम पुकारते हैं तो भगवान स्वयं हमारे साथ रहते हैं, भगवान स्वयं हमारे जिह्वा पर नृत्य करते हैं, भगवान स्वयं हमें अपना संग देते हैं, और हमारा जीवन कितना भी दुख में क्यों न हो तुरंत आनंद का अनुभव करता है। ये नाम साधना जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि सत्युग में भी जब ध्यान का महत्व है तभी भी नाम का महत्व है, द्वापर में जब यज्ञ करने का महत्व है तभी भी नाम का महत्व है, द्वापर में जब मंदिरों की पूजा करने का युग धर्म है तभी भी नाम का महत्व कम नहीं होता है। नाम ये अनन्य महत्वपूर्ण वस्तु है, केवल कलयुग में वो प्रधान बन जाता है क्योंकि कलयुग में अवस्था ही ऐसी है कि और कोई चारा नहीं बचता है, तो वही नाम जो सदैव शक्तिशाली है वो अधिक शक्तिशाली हमको प्रस्तुत हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम तप नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, ठीक से मंदिरों की पूजा भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए नाम साधना बहुत आवश्यक है। और ये नाम साधना इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई भी अन्य नियम इस नियम के ऊपर नहीं जा सकता है। स्मर्तव्यम तत्तम कृष्ण विस्मर्तव्यम न जातुचित, हमेशा हमको भगवान की याद करनी चाहिए और कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना और ना भूलना, मतलब 100% प्रूफ, फुल प्रूफ हो गया वो। जीवन में केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु याद करने योग्य है, वो है भगवान का नाम, और यही हमको सीखना है बरसाने में कि चाहे हम ऑपरेशन करते हो, चाहे हम ऑपरेशन थिएटर साफ करते हों, या रोटी बेल पे हो, या मरीजों को क्राउड कंट्रोल में हो, या ओटी के गेट पर बैठे हो, कोई भी प्रकार की सेवा हो, भगवान के नाम के अधिष्ठान में ही करनी चाहिए। इसलिए हमने यहां पर हरिनाम संकीर्तन लगाया है। मैं कभी खंड नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कितने भी हम कुशल होंगे, कितने भी हमारे अंदर कला होगी, कितने भी हम बुद्धिमान होंगे, कितने भी अनुभवी होंगे, कितने भी हमारे पास शक्तियां होंगी, बल होगी, लेकिन भगवान के बल, नाम के बल के बिना सहारे हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं। कुछ समय तक हमें भ्रम रहेगा कि हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो सब फेल हो जाएगा। जिनकी नाम की साधना हम करते हैं, वो इतना नाम इतना महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति भी साधना करती है। श्री कृष्ण भगवान जिनके नाम के सब पूरा विश्व करता है, लेकिन वो स्वयं भी साधना करते हैं, नाम साधना। और वो नाम साधना है राजा रानी के नाम का। वो अकेले में जाके जंगल में, कुंजों में, वनों में जाके बैठ जाते हैं और ध्यान लगाते हैं, राधा रानी के नाम पर जप करते हैं। ये उनका साधन है, ये उनकी आराधना है। और वो अपना बल भी प्राप्त करते हैं उनका नाम जप करके। तो कितनी महत्वपूर्ण नाम साधना है। हा? और हमारे लिए राधा और कृष्ण का, दोनों का नाम महत्वपूर्ण है। राधा रानी कृष्ण का नाम जपती है, कृष्ण भगवान राधा रानी का नाम जपते हैं, और हम राधा कृष्ण का नाम जपते हैं, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से नाम साधना है। नाम साधना से कोई मुक्त नहीं है। स्वयं अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को संतुलित करने के लिए कृष्ण भगवान राधा रानी का नाम जपते हैं। और जब वो राधा रानी का नाम जपते हैं तो राधा रानी मोहित होकर उनके वश में हो जाती है और भाग भाग के आती है। और जहां पर कृष्ण भगवान का नाम, राधा रानी का नाम जो है, उसका महत्व यह है कि रा नाम का उच्चारण करते ही अनंत जन्मों के कष्ट और ताप नष्ट हो जाते हैं। गर्भवास जो प्राप्त हो सकता है, गर्भवास का मतलब क्या है, पुनः माता के गर्भ में चले जाना, वो गर्भवास जो प्राप्त होने की संभावना है वो भी नष्ट हो जाती है। तो व्यक्ति शुद्ध हो गया ना पूर्ण तरह से। धा नाम से क्या होता है, धा उच्चारण करते ही कृष्ण भगवान सम्मोहित हो जाते हैं और उस नाम को जप करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं अपने द्वार पे दौड़े आएंगे। इसलिए हमको राधा का नाम भगवान के पहले हम जपते हैं, हरे हरे कृष्ण। इस भावना से कि कृष्ण का भी ध्यान अगर आकर्षित करना है तो राधा रानी को पुकारना पड़ेगा, राधा का ध्यान आकर्षित करना है तो कृष्ण को पुकारना होगा। इसलिए हम दोनों का नाम पुकारते हैं, क्योंकि हम दोनों की कृपा चाहते हैं। और दोनों की कृपा जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, और दोनों हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे ही भगवान राधा रानी को रास में एक बार छोड़कर, जब गोपियों को थोड़ा सा अहम हो गया तो वो छोड़कर इमली तला पेड़ के नीचे बैठे थे और गोपियां व्याकुल होकर ढूंढ रही थी उनको, सब जगह पे गीत गा रही थी। तो भगवान ने राधा रानी के विरह में, उनको भी विरह हो रहा था क्योंकि वो छोड़ के गए थे, दुख हो रहा था उनको, तो वहां पर बैठकर उन्होंने उस पेड़ के नीचे राधा नाम का जप किया। और राधा रानी का जो भाव है, जो प्रेम है उनके प्रति, उस पर ध्यान किया, उस पर विचार किया। और वो भाव के बारे में चर्चा, विचार करते समय, ध्यान करते समय उनको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वो आनंद विभोर हो गए और उनका रंग जो है वो सांवला रंग बदल के स्वर्ण कांति गोरा रंग हो गया उनका। उनको पता नहीं, वो तो पूर्णता से मग्न हो गए उनमें। जब भी करना है तो ऐसे करना चाहिए, मग्न होकर, मन के अंदर अनेक ट्रैक्स नहीं चलने चाहिए। काम का एक ट्रैक चल रहा है, एक काम वासना का चल रहा है, एक धन का चल रहा है, एक भगवान के नाम का चल रहा है, एक और कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शाखा मन नहीं होना चाहिए हमारा, एकाग्र होना चाहिए, एक ही हम गुरु नंदन। हमारी बुद्धि को एकाग्र होकर हमको भगवान का नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे पुकारेंगे तो ही वो सुनेंगे। तो कृष्ण स्वयं हमें जब कैसे करना है दिखा रहे हैं मग्न होकर, यहां तक कि वो राधामय हो गए, इतना वो राधा नाम के जप में मग्न हो गए। और उतने में वहां से राधा रानी अपने सखियों को लेकर ढूंढते ढूंढते आती है, तो देखती है कि ये कौन अद्भुत व्यक्ति है, मोर पंख धारण किया हुआ है, पीताम्बर भी पहना हुआ है, लेकिन रंग तो स्वर्ण कांति गोरा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। तो लेकिन पास में गए तो पता चला कि कृष्ण ही, लेकिन ऐसे कैसे हो गए। तो उनको छूते हैं, तो छूते ही अपनी बाह्य चेतना में कृष्ण आ जाते हैं, मतलब ही कम्स टू एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। और धीरे धीरे उनका सांवला रंग जो है वापस लौट के आता है, फिर वो आंखें खोलते हैं, राधा रानी को देखते हैं। राधा रानी उनको पूछते हैं ये क्या अवस्था है, इसका रहस्य क्या है। तो कहते हैं कि जब मैंने आपके बारे में विचार किया, आपके नाम का जप किया, तो मेरी ऐसी अवस्था हो गई और ऐसे अद्भुत आनंद का मैंने अनुभव किया जो मैंने पहले कभी भी नहीं किया था। अभी मैं इस आनंद से ललचा गया हूं और मैं इस आनंद को और अनुभव करना चाहता हूं, और मैं जान गया हूं कि मेरा ध्यान और सेवा करते हुए, मुझ पर प्रेम करते हुए, मुझसे भी अधिक कई गुना आप आनंद का अनुभव करते हो। इसलिए आपका जो आनंद है उसको समझने के लिए मैं आऊंगा, आपका भाव लेकर अवतार लूंगा, और आपका जो मुझ पर प्रेम है, जिस कारण से आप मुझे मेरी ओर आकर्षित हो जाती हो, जो मुझे पता नहीं है कि मुझमें ऐसी क्या चीज है जो देखकर आप आकर्षित हो जाती हो, वो मैं सब कुछ अनुभव करना चाहूंगा। कृष्ण भगवान सर्वज्ञानी होने पर भी ये चीज नहीं जानते हैं कि राधा रानी का आनंद क्या है। हमको भी सबको जानना चाहिए कि भगवान तो भगवान की स्थिति पर है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान से भी अधिक आनंद का अनुभव करता है जब वो भगवान की सेवा करता है। और भक्त का जो आनंद है वो भगवान जान नहीं सकते। सेवक जो होता है उसको सेवा में जो आनंद आता है उस वो इतना महान होता है कि उतना आनंद जो है जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भी प्राप्त नहीं होता है। समझ आया आपको ये बात? जो सेवक का स्थान जो है वो एक्चुअली श्रेष्ठ स्थान है, जो सेवक बन के रहना चाहिए। भगवान भी सेवक की परिकाष्ठा है, वो भी राधा रानी की सेवा करते रहते हैं, हमारी सबकी सेवा करते रहते हैं। हाँ करते कि नहीं? हम सब लोग कीड़े मकोड़े का जिंदगी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ परमात्मा के रूप में साथ देते हैं, सब जगह में गाइड करते रहते हैं, हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं भगवान? हम लोग उनका विद्रोह करते हैं, लेकिन फिर भी हमको हवा देते हैं, पानी देते हैं, अन्नदान देते हैं। इतना भी गरीब होगा तो भोजन तो मिलता है उसको, भीख मांगने पर क्यों ना हो, लेकिन दो वक्त खाना तो मिल जाता है, जिंदगी चलती रहती है। और जीवन को चलाने के लिए भगवान ही सहायता करते हैं, मतलब सेवा ही तो कर रहे हैं। तो सेवा का धर्म जो है वो बहुत श्रेष्ठ धर्म है, और सबसे उच्च सेवा जो है नाम सेवा है, श्रवण और कीर्तन, उसके बाद में स्मरण, कान से सुनना, मुंह से बोलना, और जो कान से सुन रहे हैं जो मुंह से बोल रहे हैं उसको याद करना, क्योंकि तभी वो याद हो जाता है जब उसका श्रवण और कीर्तन होता है। हमारे पढ़ाई के अंदर में यही सीखते हैं ना, अगर कुछ याद रखना है पढ़ा हुआ तो पहले वो रटना चाहिए और सुनना चाहिए ठीक से। इसलिए हम लोग बचपन में जोर जोर से पढ़ते थे हमारी किताब को, मुंह से बोलेंगे कान से सुनेंगे अपने आप स्मरण में आएगा। और कीर्तन का मतलब क्या है? जो सुनेंगे उसको बोलेंगे तो याद रहता है वो, जैसे हम कथा कर रहे हैं। तो अगर दो चार बार उसको सुना दिया तो परमानेंट याद हो गया। आपको लगता होगा जितनी कथाएं याद क्यों आ रही, क्योंकि बार बार बोलने का मौका मिलता है, इसलिए वो याद आती है, सब कथाएं डिटेल में याद आती है, क्योंकि उसको बार बार दोहराते हैं। यही रहस्य है भगवान को याद करने का, भी यही रहस्य है, बार बार दोहराना है। उठते बैठते तो सुई चुभ गई, कुछ पत्थर लग गया, कुछ ऊ हो गया, आ हो गया, तो कृष्ण का नाम लो तो ही याद आएगा। जब अंतिम समय 40,000 सांप काटेंगे, मतलब इतना दर्द होगा, उसमें याद कैसे आएगी? जब कोई प्रैक्टिस किया हो तो जरा कुछ हो गया था भूल जाते हैं भगवान को, कुछ भी बाद में याद आता, अरे 10 मिनट के लिए भूल ही गए थे पूरा, इतना कष्ट हुआ तो याद ही नहीं आया। उस दिन वो एक माता जी वहां से श्री जी मंदिर से उतर रही थी, तो उसके अंदर उसके ऊपर बंदर ने झपक मारी पड़ी, तो वो 50 सीढ़ियां ऐसे भाग के आई चिल्लाते हुए, बाप रे बाप, मैं वहीं खड़ा था, तो मैंने सहारा दिया उनको तुरंत। उतरते मैंने उनसे पूछा कृष्ण को भूल गए ना? हाँ भूल गए। देखो 2 मिनट की बात भी नहीं थी, बंदर ने झपक मारी उनके ऊपर, चौल खींच लिया और ऐसे चांद के डर से भाग गई वो 50 सीढ़ियां ऐसे, जैसे कि फिसली गई पूरे ऐसे एकदम जोरदार चिल्लाते हुए जान की धर से। तो ये हमारी परीक्षा है, इसीलिए जीवन दिया है कि हर स्थिति में, दुख की और सुख की स्थिति में उनकी याद करते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हर समय कृष्ण नाम। हमारे कृष्णदास बाबाजी महाराज थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, अकिंचन कृष्णदास बाबाजी महाराज, वो दिन रात भगवान का नाम जपते थे, कभी सोते हुए दिखाई नहीं पड़े। वो राधानाथ जी महाराज बताते थे गुरु के साथ में रहते हुए, ही नेवर न्यू व्हेन ही वाज स्लीपिंग, फुल टाइम डे एंड नाइट हरिनाम। क्योंकि हरिनाम के अंदर एक और एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि उसके एक बार रुचि लग गई आपको तो आप सभी इंद्रियों के वेगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं केवल उसी के सहारे। तो ये रहस्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है, और इसलिए इस महत्वपूर्ण रहस्य को प्रकट करने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महापुरुष बन कर आते हैं, और इस रहस्य को स्वयं अपने मुख से, अपने हाथ से, अपने जीवन से लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान को कोई जरूरत नहीं है ऐसे साधक बन के आने की, सब साधक बन के आ रहे हैं ना, वो भगवान बनकर नहीं आ रहे हैं, भक्त बनकर आ रहे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे भक्त बनकर आ रहे हैं। साधना कैसे करनी है दिखाने के लिए आ रहे हैं, और दिखा भी रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं। यही चैतन्य महाप्रभु दोबारा गए उसी जगह पर जहां पर वो सामने रंग के गोरे रंग के हो गए थे, चैतन्य महाप्रभु उसी जगह पर जाके जप करते थे इमली तला के पास, और वहां पर राधा भाव लेकर जब कृष्ण नाम का जप करते थे तो स्वर्ण रंग के गौरांग महाप्रभु सामने रंग के कृष्ण बन जाते थे, मतलब उस रंग को धारण करते थे, यानी कि कृष्णमय हो जाते थे। एक ही जगह का लीला है, वो दोनों बार वो बता रहे हैं कैसे ध्यान लगाना है भगवान के नाम पर। एक बार कृष्ण बनकर राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं, फिर राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, और ये अनुभूति कर रहे हैं कि कितना श्रेष्ठ आनंद इसके अंदर। हम और आप उसका शब्दों में या बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते हैं कि कितना श्रेष्ठ आनंद कैसा होता है, वो किसी मात्रा में उसको नापे हम नहीं समझ सकते, केवल अनुभव करना चाहिए। ऐसी शक्तिशाली वस्तु भगवान ने हमको स्वयं दी है, और क्या उसका रहस्य है कि पिछले अनंत जन्मों में जिसने शास्त्र का अध्ययन किया है, शास्त्र के सार को समझा है, पिछले अनंत जन्मों में जितने पुण्य कार्य किए हैं और भगवान के भक्तों की थोड़ी मोटी सेवा की है, ऐसे ही व्यक्ति को इस सब कार्यों के निचोड़ और सार के रूप में भगवत नाम प्राप्त होता है। अगर आप सब लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि पिछले जन्मों में आपने सारे पुण्य कार्य किए हैं, कर्मकांड किए हैं, यज्ञ किए हैं, शास्त्र का अध्ययन किया है, वैष्णवों की सेवा की है, इसके फल स्वरूप आपको ये नाम की भेंट भगवान ने दी है। और ऐसा करने के बाद में, अगर नाम मिलने के बाद में अगर आपका नाम जप में ध्यान नहीं है तो वो दुर्भाग्य की बात है, इट इज अ वेरी सैड थिंग। इतना मेहनत करने के बाद में उसका फल प्राप्त किया और फल प्राप्त करने के बाद उसको फेंक दिया, उसको यूज ही नहीं किया, या नहीं कर रहे हैं, ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। वैसे ही यहां की सेवा है, अनंत जन्मों के पुण्य के बाद में ऐसे धाम में आकर सेवा प्राप्त होती है। और यहां पर आकर अगर हम वाद विवाद करेंगे, कुछ बहस करेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, किसी से हमारी नहीं पटेगी और हम कुछ अपराध करके बैठेंगे, और जप में हमारा धाम में ध्यान नहीं होगा, सेवा में मन नहीं होगा, अहंकार चेतना बीच में आ जाएगी, तो क्या होगा, मिला हुआ भाग्य हम अपने हाथ से खो रहे हैं। इसलिए धाम में आकर जब हम जप करते हैं तो याद रखना चाहिए कि धाम में हमारे जप से हमको हजारों लाखों गुना लाभ मिलता है। इसलिए हमारे नाम साधना को पुष्ट करने के लिए हम धाम में आते हैं, सेवा का सहारा लेकर अपने नाम के प्रति जो आकर्षण है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आप सबको विनती करता हूं मैं, जब आप सेवा कर रहे हैं तो इस नाम को ना भूलना, सदैव नाम के साधना में रहना और नाम की नींव पर ही अपनी सेवा को बसाना। हमारी सेवा तब महत्वपूर्ण हो जाएगी जब हमारी नाम साधना श्रेष्ठ रहेगी और नाम के अधिष्ठान पर ही हम वो सेवा करते रहेंगे। इसलिए नेम ऑफ द लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दैट हमारे पास सेवा करने की शक्ति भी नहीं आएगी, दिमाग हमारा परेशान हो जाएगा, होता है ना, फिर सुबह अगर जप नहीं होता है तो पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है, दिन भर का सब चीज गड़बड़ हो जाती है, गलत कुछ बात बोल लेते हैं हम, यहां से वहां कुछ कर देते हैं, कुछ जरूर डिसीजन ले लेते हैं। तो रोज सुबह उठकर, चाहे बरसाने में हो बॉम्बे में हो, सबसे पहले नाम साधना करनी चाहिए। नाम साधना के बिना अपना सारा जो भाव है वो व्यर्थ है, क्योंकि भाव का अधिष्ठान नाम है। सब बेसिस ऑफ अवर भाव, जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका बेस नाम है। और अगर वो नाम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान नहीं लेता है तो सारा जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब हवा में है, बेसलेस है ना, अधिष्ठान रहित है वो। इसलिए हमको कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे सेवा करनी है, कैसे नाम करना है। श्री कृष्ण भगवान नित्य रूप से सदैव राधा रानी का नाम जपते हैं एकांत में, और वो उनकी प्राइवेट जप साधना है। तो इसलिए मैं आपको सबको विनती करता हूं कि इस नाम को ना भूलें। अभी हमको तय करना है कि जीवन के अंत में क्या याद करना है। आज तय करेंगे तो अपने पास समय है उसको याद करने का और जीवन के अंत में उसको याद आने का। आज अगर तय नहीं करेंगे और सोचेंगे कि अंत में याद करेंगे तो अंत में याद नहीं आता है। अंत में हमारी चेतना में वही याद आता है जो जीवन भर हमने उस पर प्रेम किया है, वही अंत में याद आता है। जिस पर हमारा मन हमने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, जिस पर मन को हमेशा लगाया है हमने, उसी चीज को हम याद कर सकते हैं जो हमारे लिए हमेशा याद रहता है। अभी याद जो रहता है वही एंड में याद आएगा। इसलिए अभी नाम को याद करने का अभ्यास करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नाम प्रभु जो स्वयं कृष्ण है उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपके माध्यम से ही ऐसी शक्ति दे कि आपको हम याद कर सकें। उठते बैठते जाते वक्त खाते पीते हमें आपकी याद रहे, यहां पर हम पर कृपा करें। नाम प्रभु है, नाम स्वामी है, वो हम पर कृपा कर सकते हैं। हमको चाहना चाहिए, यू टू जस्ट वॉन्ट इट, कि मुझे चाहिए। मैं यहां पर आया हूं इसी उद्देश्य से कि मैं सेवा के माध्यम से भगवान को, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करके इस नाम को याद करने के लिए प्रयास करूं। आखिर वो उद्देश्य लेकर आए जाते हैं, वो उस नाम के प्रति अधिक आसक्ति, अधिक प्रेम और अधिक बल लेकर जाइए, फिर हमारा नाम का साधना धन जो है बढ़ जाएगा। इस धन को कोई चोरी नहीं कर सकता है, ये कभी कम नहीं होता है, इसका खर्च नहीं होता है, हमेशा बढ़ते रहता है, यही इसका स्वरूप है। जो नाम करता है, नाम देता है किसी को, उसका भी बढ़ जाता है, हमारा भी बढ़ जाता है। इसलिए हरिनाम संकीर्तन में क्या करते हैं, लोग नाम वितरण करते हैं। जो लोग सो रहे हैं, जो लोग ध्यान में नहीं है, जो माया में है, उनके लिए भी नाम को दे देते हैं। प्लीज टेक द होली नेम। नित्यानंद प्रभु का क्या महात्म्य है, आज उनका जन्मदिवस है, क्या करते थे वो, लोगों के घर घर जाकर, गृहस्थों के घर घर जाकर जो गृहस्थ में फंसे हुए हैं उनके दरवाजे पर दस्तखत देते थे। दरवाजा खोलने के बाद उनको चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। प्लीज चैंट द होली नेम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। जानते हैं बलराम जी कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, स्वयं बलराम जी हैं। बल का स्रोत है वो। पिछले अवतार में उन्होंने एक एक हाथ से, एक तिरण के पत्ते से ऐसे राक्षसों का वध किया था, इतने बलशाली भगवान। कोई जरूरत नहीं उनको विनती करने की, लेकिन इस अवतार में वो करुणा लेकर आए हैं। और वो करुणा कल क्या कर रहे हैं, हम जैसे गृहस्थों को जा जाकर, उनके घर जा जाकर उनको विनती कर रहे हैं, प्लीज चैंट द होली नेम। फिर उनके मुंह पर लोग दरवाजा बंद किया करते थे, डोंट डिस्टर्ब अस, परेशान मत करो उनको, दोबारा दस्तखत देते थे, दोबारा खोलने के बाद दंडवत प्रणाम करके पैर पकड़ते थे, प्लीज चैंट द होली नेम। ऐसे उन्होंने घर घर जाकर लोगों को विनती किया। बहुत कठिन बात है, हाँ, हम जाते हैं ना कभी पुस्तक वितरण करने के लिए तो हमारे ऊपर दरवाजे बंद हो जाते, कभी कभी बहुत अपमान लगता है। साक्षात परम भगवान है, परम भगवान के अंदर परम सहनशीलता होती है, हमारे अंदर थोड़ी सहनशीलता होती है उनके अनुग्रह रूप में। और अपनी परम सहनशीलता से वो हर दरवाजे पर दस्तखत लगाते हैं। शांति तो इसलिए महाप्रभु चैतन्य ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया था, हरिदास ठाकुर के साथ जाइए और सबको हरिनाम बांटिए। इसके बाद नित्यानंद प्रभु को जब लगा कि दुनिया के सब पतित लोगों को ये नाम प्राप्त होना चाहिए, तो तो देख रहे हैं कि शराबी, जुआरी, व्यभिचारी, पापी जगाई बधाई जा रहे हैं, सबको कष्ट दे रहे हैं, बोले इनको भी नाम देना चाहिए, क्योंकि नाम जो है वो सबका तारण कर सकता है। ऐसा कोई पाप नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई पाप का ढेर नहीं है दुनिया में जो नाम से नष्ट नहीं हो सकता है। और इतना सारा पाप दुनिया में हो रहा है लेकिन नाम के माध्यम से सब कुछ नष्ट हो सकता है, ये जानते थे वो। लेकिन इनको मैं नाम दूंगा और इनका उद्धार करूंगा। यमराज जो थे वो जगाई मधाई जी के पापों का लिस्ट रखते रखते एग्जॉस्ट हो गए थे। हम लोग के अंदर गड्ढे गड्ढे बनाकर उनका रिकॉर्ड रखते थे, वो इतना पाप करते थे। वो एक आदमी दो आदमियों के पापों का रजिस्टर करने के लिए, लिस्ट रखने के लिए, दर्द नोट रखने के लिए सब यमराज का डिपार्टमेंट ओवर टाइम एग्जॉस्टेड था, ओवर टाइम और थका हुआ। तो जब नित्यानंद प्रभु ने उनको जाकर बोला कि नाम लो, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने शराब का मटका लिया और जोरदार प्रहार किया नित्यानंद के ऊपर। तो नित्यानंद जी क्या बोलते हैं, और मारो और मारो, लेकिन नाम लो। अगर वो नाम लेना प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती तो क्यों बोलते वो और लो और मारो, ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि मैं मार सहन करने का जो प्रक्रिया है वो इतना दर्दनाक नहीं है जितना कि आप नाम लिए बिना दुख भोगोगे, वो दर्दनाक है मेरे लिए। आप समझ सकते हो, इफ यू डोंट चैंट द होली नेम, द सफरिंग दैट यू विल हैव इन द मटेरियल वर्ल्ड इज मच मच मोर पेनफुल देन यू आर हिटिंग मी, एंड दैट पेन इज मच लेस देन व्हाट यूर सफरिंग विल बी। सो प्लीज चैंट द होली नेम। खून बह रहा है सर से, लोग देखकर परेशान हो रहे, अरे साधु महाराज को मार रहे हैं। तो जब मधाई ने मारा, जगाई ने रोका उसको, क्योंकि वो क्या किया उन्होंने, जब चैतन्य महाप्रभु को ये समझा कि नित्यानंद प्रभु को मार रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं, गिरे हुए हैं बेहोश से होकर, तो महाप्रभु चैतन्य वहां प्रकट हो गए चक्र लेकर, चक्र चक्र करके चक्र को हाथ में आह्वान किया और एक ही क्षण में वो दोनों का सर काटने वाले थे। इतना क्रोध में आए वो, भयंकर क्रोध में, उसको देखकर निताई ने क्या किया, बेहोशी से उठे, खून की ग्लानी से, खून निकलने की ग्लानी से भी जगकर महाप्रभु चैतन्य के चरण पकड़े उन्होंने जोरदार, महाप्रभु चैतन्य गौरंग मत मारिए चक्र से, आपका उद्धार ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है, वैसे उनको मार देंगे तो दुनिया के सभी लोगों को मार देना होगा, क्योंकि सभी लोग छोटे मोटे जगह बताई है अपने अपने स्तर पर, सभी लोग यही कर रहे हैं। तो क्या आप अवतार लेने, अवतार लेकर आए सबका उद्धार करने के लिए, सबको हरिनाम वितरित करने के लिए, वो क्या सबका वध करते जाएंगे आप? नहीं, दया करो महाप्रभु जी, करुणा करुणा। ये जब देखा बधाई ने तो भी धन्य रह गया वो, अरे इतना मैंने जान से मारने के हेतु से इनको प्रहार किया था और मेरी जान जाने का समय आया तो ये चरणों में गिरकर विनती कर रहे मेरे लिए जिन्होंने उनको मारा है, तो पिघल गया अंदर हृदय, ऐसी करुणा है नित्यानंद प्रभु के। और चक्र जो है नित्यानंद प्रभु की करुणा देखकर महाप्रभु जी के हाथ से उंगली से निकला ही नहीं, आगे नहीं बढ़ सका, भगवान का आदेश भी नहीं पाल सका वो। देखो आप, इतनी शक्ति है करुणा में, और ये भक्त के हृदय में ऐसी करुणा होती है। तो फिर ये देखकर चक्र का अवतार देखकर, भगवान का क्रोश देखकर, दोनों ही भगवान के चरणों में गिरे, तो भगवान ने जगाई को गले लगाया, जगाई को गले लगाया तो जगाई प्रेम से पागल हो गया। इतना भयंकर पापी व्यक्ति जिसका पापों का रिकॉर्ड दोनों का मिलकर रखने के लिए सब लोग परेशान थे, वो पाप से मुक्त तो हो ही गया। ये सबसे बड़ी बात है, नाम का महत्व जो है केवल पाप को नष्ट करना नहीं है, ये सबको ध्यान में आना चाहिए। हम लोग नाम का जब पाप से मुक्त होने के लिए नहीं करते, लोग नाम का जब भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते, लोग नाम का जब जब करते हैं भगवान का संतुष्ट करने के लिए, तभी नाम के जब करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं लेकिन भगवत प्रेम जागृत होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये नाम सही नाम जप की फलश्रुति भगवत प्रेम है और परिणाम भगवत संतुष्टि है। तो जैसे ही भगवान ने गले लगाया तो प्रेम से जगाई पागल हो गई, तो मदाई गिरे चरणों पर कि हमें भी प्रेम दो, हम भी उनके साथ इक्वली पाप करते थे, अगर इतने पापी व्यक्ति प्रेम के हकदार है तो मेरा भी हक बन जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने नित्यानंद जी का अपराध किया है। तो नित्यानंद जी कहते कि मैंने इनको अपराध से मुक्त कर दिया है, माफ कर दिया, आई डोंट टेक द ऑफेंस, प्लीज गिव मर्सी टू हिम ऑल्सो, उन पर भी कृपा करो। तो उनको भी गले लगाते और वो भी पाप से मुक्त होकर प्रेम में पागल हो जाते और उन दोनों के सबके पाप लेकर महाप्रभु जी का गौरवांग का शरीर जो है सब काला हो जाता है, बिल्कुल निस्तेज काला हो जाता है। अब इसके आगे नाम की महिमा सुनिए आप, पूरा स्वर्ण कांति तेजोमय भगवान का चैतन्य महाप्रभु का जो गौरांग शरीर था स्वर्णमय, वो काला हो गया पूरा। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अभी नाम संकीर्तन करो, तो लोग नाम संकीर्तन आरंभ करते हैं और नाम संकीर्तन आरंभ होने के पश्चात धीरे धीरे सारा जो पाप है काले रंग का वो नष्ट होकर महाप्रभु जी का शरीर पूरा पूर्ण दोबारा स्वर्णमय कांति हो जाती है। बोलते पता है पाप कहां गया, पाप आसमान में गया, लेकिन जो भी वैष्णवों का अपराध करेगा उसमें वो जगाए मजाए का पाप जो मैंने स्वीकार किया था जो आसमान में है वो दोबारा दोबारा हृदय में प्रवेश करेगा। इसलिए नाम जप करते समय वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए, फिर नाम का परिणाम नष्ट हो जाता है और नाम के परिणाम के इच्छित परिणाम के बदले में बहुत दुख और कष्ट प्राप्त होता है। इतना भी महान होंगे हम और वैष्णवों को दर्द देंगे तो भगवान उसको उसकी परवाह नहीं करते कि कितनी बड़ी सेवा की है इसने। इसलिए हमको कभी जब हम चुप जाते हैं फिर भी भावनावश अपराध कर लेते फिर माफी मांग लेनी चाहिए, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉरगिव मी, क्योंकि हम कितना भी बड़े होंगे समझते होंगे अपने आप को, लेकिन नाम जब साधना करते हुए अगर वैष्णवों को दुखाएंगे दर्द देंगे हृदय में तो हमारी कितनी भी बड़ी सेवा जो है कितना बड़ा पोजीशन है हमारा वो सब यूजलेस है, भगवान बिल्कुल परवाह नहीं करते उसकी, डजंट केयर फॉर एनी ग्रेट डिवोटी हु इज ऑफेंडिंग वैष्णव। तो नित्यानंद प्रभु कितना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं, इतना बलशाली होने पर भी दंड देने की शक्ति होने पर भी क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, जो जानते हैं नाम का आश्रय लेने से दुनिया के सब कष्ट मिट जाते हैं और भगवत प्रेम जीव प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम नित्यानंद प्रभु की कृपा की याद करते हैं, उनकी कृपा इतनी महत्वपूर्ण है कि उनकी एक कृपा दृष्टि हम पर जब पड़ती है तो जीव प्रेम से पागल हो जाता है। ऐसे 300 बालक थे एक चक्र धाम में, यहां पर उनका जन्म हुआ था, नित्यानंद जी ने केवल उनको देखा, ऐसे केवल एक नजर उनको देखा तो जब जैसे पत्ते होते ना खेलने वाले पत्ते कार्ड्स खेलते ना हम लोग कैसे गिर जाते सब एक लाइन से ऐसे गिर गए प्रेम भावना में वश होकर केवल देखने मात्र से। फिर उनके साथ उन्होंने 3 महीने लगातार दिन रात कीर्तन किया बच्चों के साथ, बच्चों ने खाना नहीं खाया और भोजन नहीं किया और निद्रा सोए नहीं वो कुछ नहीं किया उन्होंने 3 महीने तक 90 दिन तक लगातार कीर्तन करते रहे वो पागलों की तरह नित्यानंद प्रभु के साथ। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है और उनकी कृपा प्राप्त किए बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए बिना राधा कृष्ण को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम समझते हैं कि हम राधा कृष्ण के भक्त हैं और महाप्रभु जी की कृपा को नहीं समझते हैं तो हमारे राधा कृष्ण की भक्ति सब भूल भुलैया है, भ्रम है हमारे से। तो महाप्रभु चैतन्य जो आए हैं वो गौलों के प्रेम धन बांटने के लिए आए हैं हरिनाम संकीर्तन के रूप में। ये उन्होंने जो हरिनाम उनको दिया है ना ये केवल हरिनाम नहीं है, ये गौलोक के प्रेम का सार है। इससे गौलोक में जो लोग प्रेम का अनुभव करते हैं भगवान का वो हम अनुभव कर सकते हैं, ये ऐसा हरिनाम आपको दिया उन्होंने। इसलिए बड़े प्रेम से और श्रद्धा से इस नाम को हमको जपना चाहिए। तो राधा नाम का महिमा मैंने आपको बताया कि भगवान भी उनके नाम का उच्चारण करते हैं। एक छोटी सी कहानी बताते हैं आपको लीला यहां को नाम की महिमा बताने के बाद, सबको मैं विनती करता हूं कि यहां का निवास जो है पूर्णता से आप उपयोग कीजिए, यहाँ की भूमि इतनी शक्तिशाली है कि जो जब करने में बम्बई में आलस से आता है, ध्यान लगता नहीं है, ध्यान बढ़ जाता है, मन विचलित हो जाता है, वो ही व्यक्ति यहाँ पर आकर बहुत चुस्ती से जब करने लगता है, क्योंकि जो ब्रज भूमि है, बलराम जी का विस्तार है, इसका प्रभाव यहाँ पर होता है, तो वो हमको सपोर्ट मिलता है। और जब में आलस से और वो नहीं आता है, सिंसियरिटी होगी तो बहुत अच्छा जप होगा आपका। 16 माला के बाद 25 माला भी आसानी से होती रहेगी, ऐसा शक्ति है इस धाम के अंदर, ऐसा वातावरण, जिसकी लहरी यहाँ पर उपलब्ध है, उनका पूरा लाभ लीजिए आप। तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है प्रेम सरोवर वन, और प्रेम सरोवर वन में राधा रानी एक बार अपनी सखियों को लेकर लुका छुपी खेल रही थी, ललिता जी, विशाखा जी सब मिलकर, और उन्होंने एक गोपी को बना दिया, आंख बंद कर दी उसकी, और सब लोग छुप गए जाकर, और राधा रानी जाकर छुप गई एक अंधेरे कुंज में, जहां पर थोड़ा अंधेरा था, बहुत सारे झाड़ी थी वहां पर, और कृष्ण जो है छोटे से कृष्ण थे उस समय बालक अवस्था में, वहां कर वहां पर घूमते घूमते आए थे, उसी कुंज में थे वो, जिस कुंज में राधा रानी जो है छुपने आई। जैसे ही राधा रानी का दर्शन हुआ, छोटे से दो बालक थे दोनों, तो कृष्ण बेहोश हो गए उनको देखकर, प्रेम से विवल होकर, पागल होकर बेहोश हो गए और गिर गए वहीं पर। तो राधा रानी तो खेल खेल में छुपने आई थी, लेकिन देखा कि अरे ये नीला सा बालक मुझे देखकर बेहोश हो गया, बहुत दुख हुआ उनको, तो उनको वो सवारने गई, कुछ करने गई, पहले तो संबित हो गई, अरे अचानक बालक मूर्छित कैसे हो गया, पास में गई, कुछ उसके लिए कुछ करना चाहा उसने, लेकिन उसके पहले ही आवाज आ गई कि वो पकड़ लिया, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो एक बार एक दिशा में मन खींच रहा है इस बालक को बेहोशी से होश में लाऊं, और एक बार पुकार आ रही है चलो चलो चलो, तो वैसे छोड़ के वो चली जाती है, बड़ी व्याकुल हो जाती है, और बार बार दुख होता है उसको कि मैंने क्यों छोड़ के आई उसको, कुछ करना चाहिए था, क्योंकि इतना प्रेम का अनुभव हुआ दोनों को, समझ में आया उसको कि बड़े प्रेम से ही वो व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। तो यहां पर कुछ देर बाद भी कृष्ण होश में आए, वो भी बहुत मायूस हो गए, बहुत दुखी हो गए, कहां है वो कन्या, पहली बार देखा मैंने, कौन है वो, किसकी बेटी है, उसको देखकर मैं हृदय में प्रेम का सागर उमड़ आया। उदास होकर वहां से चले गए नंदगांव में, मैया के पास गए और सो गए, उसके बाद ना खा रहे ना पी रहे, ना मक्खन मांग रहे, ना कुछ खेलने जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, मैया परेशान है, ये क्या हो रहा है। यहाँ पर राधा रानी जो है उस दिन के बाद में फिर वो भी खेलने नहीं आ रही है, वो भी परेशान है, वो भी व्याकुल है, कौन था वो नीलासा बालक। तो यहाँ कृति मैया भी परेशान है, क्या हुआ इस कन्या को, ना खेलती है, ना कुछ बोलती है, ना कुछ कुछ कर रही है, ना सखियों के साथ में जा रही है। तो ललिता जी को बुलाती है, ललिता जी जो है ना राजा रानी से बड़ी है, तो बहुत चतुर और कुशल है, तो कोई भी संकट प्रसंग की उनकी सहायता करती है। तो ललिता जी को पुकारती हूँ, ये देखो इस लाली को, देखो किशोरी को, कुछ नहीं कर रही है। तो वो बोलते मुझे उनको एकांत में मिलना है। तो ललिता जी जाके उनको एकांत में मिलती है, पूछती है क्या बात है, तो सब प्रसंग वर्णन करती है। पता है उस दिन हम लोग खेल रहे थे, तो मैं कुंज में गई थी, तो सुंदर नीलासा बालक मोर पंख धारण किया हुआ, पीतांबर पहना हुआ, मुझे देखकर ही बेहोश हो गया, मैं भी व्याकुल हो गया इसको देखकर, आपने बुलाया ऐसे जाना पड़ा, लेकिन उसको बेहोश छोड़कर मैं चली आई, तो मैं बहुत दुखी हूं। तो और वर्णन करो बालक का, तो उसने वर्णन किया कि नीला रंग था उसका, उसको बांसुरी भी थी, और वो मोरपंख धारण किया हुआ था, घुंघराले बाल थे, कमल जैसे नयन थे उसके, बहुत आकर्षक था, उसकी हरेक उंगली बहुत प्रकाशमान थी। तो ललिता कहती कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कहाँ जाना है उसको घूमने के लिए। तो ललिता जी जाती है नंदगांव, और नंद भवन प्रवेश करके यशोदा मैया से मिलती है, तो तुरंत यशोदा मैया उनको देखते ही कहती है कि देखो हमारा बालक जो है वो मक्खन नहीं खाता है, कुछ करता नहीं, जाता नहीं, घर से बाहर ही निकलता नहीं, कितने दिन हो गए। तो कहते हैं कि मैं इसका उपाय जानती हूँ, मुझे उसमें एकांत में मिलना है। तो एकांत में मिलती है, पूछती है क्या बात है, क्योंकि उस दिन मैं वो कुंज में गया था अंधेरे कुंज में, वहां पर एक लाली का दर्शन हुआ मुझे, जो स्वर्ण कांति की थी, कमल नयनी थी, हाँ उसके शरीर से बहुत सुगंधित सुगंध आ रही थी, उसके नीले वस्त्र थे, और उसके दर्शन से ही मैं इतना मोहित हो गया कि वहीं अपने होश को खो बैठा। सबसे मुझे ना मक्खन मीठा लग रहा है, ना खेल मीठा लग रहा है, ना कुछ मीठा लग रहा है। बस दिन रात उसकी याद सताती रहती है और पता नहीं वो कहां पर है और कौन है। तो ललिता जी कहती है कि मैं जानती हूं वो कौन है, आप चिंता मत करो, मैं उनसे मिलाऊंगी आप, चलो आप मेरे साथ। तो ललिता जी उनको अपने कुंड पर ले जाती है। नंदगांव में एक कुंड है, इसका नाम है ललिता कुंड। वो बरसाने का नंदगांव में एम्बेसी है। नंदगांव में क्या क्या हो रहा है ये समझने के लिए वहां पर एक स्थान बना के रखा है सखी ने अपना। वहां से सब अंदाज लेती है वो पूरा, और यहां पर खबर पहुंचती है क्या हो रहा है, उसके अनुसार वहां की योजना बनती है कि क्या करना है। वहां जाकर वो नहलाती है श्याम सुंदर जी को, और सब सखियों को लेकर जाकर उनको अच्छा सवारती है, उनके बालों को श्रृंगार करती है। एक गांव है, इसका नाम है पहनावली। वहां पर जाके उनको वस्त्र पहनाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, यानी कि दूल्हा बनाते हैं इन शॉर्ट। और फिर एक गांव है गजरोटा, वहां पर जाके उनको काजल लगाते हैं। सखियां सब काजल लगाकर दूल्हा बनाकर श्याम सुंदर को आकर राधा रानी से मिलाते हैं। ये राधा रानी के कृष्ण के पहले मिलन का कथा है। जो गोपाल जी का मंदिर है ना यहाँ पर, तो प्रेम सरोवर वन में आता है, वहीं पर ये मिलन हुआ है उनका ललिता जी के द्वारा। और वहां पर फिर उन्होंने नौका विहार किया। अभी तो वहां पर जल नहीं है किधर, लेकिन उस समय वहां पर उन्होंने नौका विहार करते थे, वो डोंगी लीला कहते हैं। तो ऐसे चटपटी सुंदर सुंदर लीला है यहाँ पर। जब भगवान राधा रानी को याद करते हैं, राधा रानी कृष्ण भगवान को याद करती है, दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं, प्रेम का यहाँ पर प्रकट होता है दोनों का एक दूसरे का। और हमारे लिए ये सुनना हृदय को बड़ा आनंद देता है, कृष्ण भगवान की लीला। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारे जीवन का जो कष्ट है भगवान की लीलाओं को सुनने से नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंत में आप सबसे विनती करेंगे, नित्यानंद महाप्रभु से आप प्रार्थना कीजिए कि हमारा इस नाम में मन लगे, दुनियादारी के मोह से हमारा मन हटे, और आपके द्वारा दिए गए भगवान के हरि नाम संकीर्तन में हमारा मन लग जाए, तो ही जीवन की सफलता है। जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच।